हमारा टॉपिक है खैबर से करबला तक जंगों का मकसद और इसमें मासूमीन अलैहिस्सलाम का किरदार। पहले जो है एक इब्तिदाइया इसमें स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स हैं। पहले तो ये कि जो दो जंगें हैं ये दो किस्म की जंगें हैं, ये जो टोटल जंगें हुई हैं, एक है जो बैरूनी हमला हुआ था एक्सटर्नल जिसको आप कह सकते हैं, और एक है इंटरनल जो कि दाखिली सतह पर अंदरूनी जिसको कहते हैं खलफशार और अंदरूनी मसाइल और जंगे हैं। तो इंशाल्लाह तेजी के साथ डिस्कस करेंगे। एक बात जहन में रहे कि पैगंबर इस्लाम और आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम की तमाम जंगें डिफेंसिव हैं न कि अफेंसिव, दिफाई जंगें थी न कि हमला किया था किसी पर। कुरान मजीद में जहाद की जो आयात हैं उस आयात से ये बात नहीं समझी जा सकती है कि कुफार और मुशरिकीन को, गैर मुसलमान को इस्लाम अकीदे के तौर पे एक्सेप्ट कराने के लिए फोर्स किया जाए और बाय वार और बाय वेपन उनको मजबूर किया जाए कि वो इस्लाम को कबूल करें, इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता और न ही आयात से ये बात समझी जा सकती है। जो भी जंगें हुई हैं वो शराइत के साथ रही हैं, मसलन मजलूम की मदद करने के लिए, जुल्म और जालिम से लड़ने के लिए, ताकि सोसाइटी में मजहब के आजादाना इंतखाब के लिए ग्राउंड बन सके। इस अनामीन से जरूर यकीनन जंगें हुई हैं और हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। कुरान मजीद में जहाद की तमाम आयात, ख्वाह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, इस बात को बाय कंडीशन और शर्त लगाती हैं कि जहाद मजलूम की मदद के लिए होना चाहिए, जुल्म से लड़ने के लिए और मजहब के आजादाना इंतखाब फराहम करने के लिए होना चाहिए। ऐसा ग्राउंड फराहम करें, रुकावटें दूर करें जिससे लोग मजहब को आजादाना तौर पर खुद अपनी मर्जी के साथ इंतखाब करें, मजहब को किसी के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत ना करें। इसलिए इसी चीज को सामने रख कर बाज जो है उलमा व फुकहा ने कहा है कि जितनी भी माजी में और हुजूर पाक के जमाने में जंगें रही हैं वो डिफेंस के तौर पे थी, डिफेंसिव जंगें थी, दिफाई जहाद था, न कि जो है इब्तदाई। इब्तदाई से क्या मुराद है उसको भी इंशाल्लाह थोड़ा टच करते हुए निकलेंगे। जहाद की किसी एक आयत में भी मुसलमानों पर यह फर्ज नहीं है कि वो मुशरिकीन से लड़ें और उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करें, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्हें मार दें, बिल्कुल भी इस तरह की कोई आयत कुरान में नहीं मौजूद है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि इब्तदाई जहाद का मकसद दीन कबूल कराने के लिए इब्तदाई जहाद नहीं है, बल्कि दीनी सोसाइटी और हुकूमत की तश्कील और दीन की हाकिमियत के लिए, जी हाँ, जंग हो सकती है विदाउट इसके कि किसी ने अटैक किया हो, उसको डिफेंस किया जा रहा हो, इसके बगैर, क्योंकि आप एक इस्लामिक सोसाइटी और एक दीनी माशरा और हुकूमत की तश्कील करनी है और कुछ लोग रुकावट बन रहे हैं, तो जी हाँ उन रुकावटों को दूर करें, बेशक वेपन भी उसके लिए यूज करना पड़े जैसे कि मदीने मुनव्वरा है। यहाँ पे मैं एक अजीम शिया तारीख की शख्सियत जो हाल ही में गुजरी है और जो हमारे जमाने का शहीद मुर्तजा मुतहरी था, और वो है मरहूम आयतुल्ला मिस्बाह यजदी, उनका जो है एक कौल में नकल करना चाहूंगा, बस एक उनकी लाइन है। वो फरमाते हैं इब्तदाई जहाद का मकसद इस्लामी हुकूमत की तश्कील के लिए है, न कि दीन को बाय फोर्स कबूल कराने के लिए, एक्सेप्ट करो वगरना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, बिल्कुल भी इस तरह नहीं है जैसे कि एक परसेप्शन क्रिएट किया गया और ऑलमोस्ट बहुत सारे मुसलमान भी सोचते हैं कि इब्तदाई जहाद का मतलब ये है कि हम जाएंगे लोगों से, जब हमारे पास ताकत होगी तो जबरदस्ती कबूल करवाएंगे दीन को, बाय फोर्स एक्सेप्ट करवाएंगे। कुछ और उलमाए कराम ने इस के अंदर कुछ और बात ऐड कर दिया है कि इब्तदाई जहाद से मुराद दरअसल उस बिगाड़ और फसाद को खत्म करना और रोकना है जो हक के और इंसाफ के पैगाम को लोगों तक पहुंचने नहीं देता, लिहाजा अगर इस माने में भी लिया जाए तो भी ये एक तरह से डिफेंसिव और डिफेंस वाली जंग है, न कि इब्तदाई जंग का जो एक अवामी कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट टोटली उसकी कोई गुंजाइश हमारे पास मौजूद नहीं है। हाँ, अहले सुन्नत भाइयों के हाँ कुछ नजरियात हैं, और जिन सोसाइटीज में अहले तशी अक्सर जो अहले सुन्नत डोमिनेशन और अक्सरियत में रहे हैं, तो कहें ना कहें वो मुतासिर हुए हैं, जैसे कि एक और मसले से भी ये मुतासिर हुए हैं, इफेक्ट कर गए हैं, कि वो एंड पे शायद हम डिस्कस करें वक्त मिलता है तो। बस खुलासा क्या निकलता है, रसूलुल्लाह के दौर में जो जंगें हुई हैं वो दिफाई है न हुजूमी, डिफेंसिव है न ऑफेंसिव। किस तरह हुई थी, दुश्मन के हमले को रोकने के लिए ये जंग हुई है, या दुश्मन की जानिब से क्रिएट करदा एक कियोस को खत्म करने के लिए, रुकावट को दूर करने के लिए ये जंगे हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सलातीन, सलातीन यानी किंग्स, बादशाहतें जो इस्लामी खिलाफत के नाम से बनी हैं, उनकी जानिब से जो जंगे की गई हैं, जाकर सलीबी जंगों तक, ये तमाम जंगे अपनी टेरिटरी, जुग्राफिया, अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए था, जिसको उर्दू में ईश्वर गुशाई कहते हैं, और अपनी सल्तनत की टेरिटरी को मैक्सिमम बॉर्डर्स की तरफ ले जाने के लिए थी, जिसका इस्लाम में कोई जो है मकाम नहीं है, क्योंकि उसकी कोई कानूनी शरीयी हैसियत नहीं है, किसी किस्म की लिजिटिमेसी इस्लाम की तरफ से उसके लिए नहीं है। इसलिए कि इस्लाम में अगर इस तरह की कोई जंग करनी हो तो शर्त है कि खुदा के नुमाइंदे की तरफ से इजाजत होनी चाहिए। असर गैबत ने जामे उस शराइत फकी और हुकूमत इस्लामी के कयाम में वली ये फकी की इजाजत से ही हो सकती है, उसके अलावा कोई उठता है, कोई बादशाह, कोई किंग, कोई सदर, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ऐसी हरकत करता है, तो उसकी कोई इस्लामिक कोई हैसियत कानूनी और शरी लिहाज से नहीं है। अब आते हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की जंगों में, शुरू करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जंग में शिरकत सब पर क्लियर है, वाज़ह है। सैदा कायनात दो जंगों में इनडायरेक्ट शरीक रही हैं, जंग ओहद में एंड ऑफ द जंग तकरीबन एंड हो रही थी ओहद की जंग, तो जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए आप चली गई, क्योंकि आपको इतला मिली थी कि हुजूर पाक भी जो है इसमें इंजर्ड हुए हैं, तो लिहाजा आप चली गई ख्वातीन के साथ। जंग खंदक में इनडायरेक्टली आपने पार्टिसिपेशन किया है, कि खंदक जब खोदी जा रही थी, जो 3 या 6 दिन के अंदर खोदनी थी, कि सारे सुबह शाम छोटे बड़े सब काम कर रहे थे, तो हुजूर पाक को रोटी लेकर जाती थी, खाना पीना लेकर ले जा रही थी दीगर ख्वातीन की तरह। फतेह मक्के के वक्त आप मौजूद थी, ये तो आ गई सैयदे कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का, तो आप लोगों को मालूम है, हम डिस्कस भी करेंगे आप। अब आते हैं इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, क्या इन जंगों में थे? जी बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम 3 हिजरी में पैदा हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 हिजरी में पैदा हुए हैं। जंग ओहद के बाद विरादत हुई है, यानी बदर भी हो गई थी, ओहद भी हो गई थी। जंग खंदक या जिसको जंग अहजाब भी कहते हैं, सूरह अहजाब इसी खंदक वाली जंग को के हवाले से है, 5वीं हिजरी में हुई है, कि जंग खैबर 7 हिजरी में हो गई है। लिहाजा इन दो इमाम, इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इन जंगों में तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि ये तो एज के एतबार से उसमें नहीं थे। अलबत्ता रसूल खुदा इमाम अली अलैहिस्सलाम और सैयदे कायनात डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन जंगों में रही है। अच्छा, अब आते हैं ये जंगे हुई क्यों। मैंने अर्ज किया शुरू में, पैगंबर इस्लाम के जमाने में लड़ी जाने वाली तमाम जंगें दिफाई थी। मदीने की इस्लामी रियासत जो उस वक्त स्टेट बन गई थी इस्लामिक, अक्सरियत ने इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन वहां पर कुछ गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम ट्राइबल्स और कबीले वहां पर रहते थे, जिन्होंने उस इस्लामिक स्टेट के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था, और इनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, या जिनको आप कह सकते हैं, जिनको बोल्ड करके या हाईलाइट करके अगर हम दिखाना चाहें, तो बनी नजीर हैं, क्योंकि ये बड़े रोल हैं इनके आगे, बनी नजीर, बनी कुरैजा और बनी कुनैनका, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है। बदर की तरफ आते हैं जो 2 हिजरी में हुई, तेजी के साथ बढ़ते हैं आगे। बदर मदीने वालों को ये मालूम हुआ, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट के जरिए से सोशल मीडिया में दिग्गजों पर ट्वीट किया जाता है, खासकर इंग्लिश में बहुत ज्यादा इसको करते हैं। अबू सुफियान का तजारती काफिला शाम जा रहा है, इसका पता चला किसको? मदीने की रियासत और लोगों को, इस्लामिक रियासत को। पैगंबर इस्लाम ने ऑर्डर किया कि जाओ उन तजारती काफिले को अटैक करो, रोको, उनके पास जितना भी माल है उस माल को वापस लेके मदीने में आ जाओ, छीन लो उनसे। मैं उसी टर्मिनोलॉजी के साथ बात करूंगा जो है जी, ऐसा ही हुआ। क्यों, क्या ये जायज है? हाँ, क्योंकि अगला पार्ट हिस्ट्री का नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन खड़ा होगा क्या ये जायज है। डेफिनेटली जायज नहीं है, कैसे किसी को ऐसे कर सकते हैं? तो फिर मसला क्या था, कैसा ऑर्डर दे दिया? इसलिए कि जब बाय फोर्स रेफ्यूजी हो गए थे मक्के से मुसलमान और मुहाजिर बनकर, मुहाजिर मीन्स रेफ्यूजीज आज की जबान में, रेफ्यूजीज होकर मदीने आए थे, वो दौलत रखते थे, प्रॉपर्टीज थी उनके पास, अपना पैसा था, सब कुछ वहां छोड़कर आए थे, वो तो जान बचा के भागे थे बेचारे वहां से, वो रेफ्यूजी अपने साथ सामान और सारे खेत खलियान बेच के पैसे बना के तो नहीं आए थे ना, खेतों खलियान वहां थे, उनके जानवर वहां थे, उनकी प्रॉपर्टीज वहां पर थी, उनके जो कुछ था वो सब कुछ मदीने में छोड़कर लुट पुट के बेचारे खाली अपने कपड़ों और घोड़े और एक तलवार, या किसी के पास वो भी नहीं थी, अगर होती तो जंग के बदर में सबके पास तलवारें होती, कम से कम मुहाजरीन रेफ्यूजीज के पास वो भी नहीं थी, बेचारे ऐसे ही आ गए थे जान हथेली पे लेके। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज कहाँ गई भाई? इनकी प्रॉपर्टीज को कब्जा किया किसने? कुरैश ने, लूटा, बंदर बांट कर दी, और सबको इकट्ठा किया किसने? अबू सुफियान ने। और ये जो तजारती काफिला सीरिया की तरफ जा रहा था, आज की सीरिया उस वक्त का शाम, बिजनेस डीलिंग के लिए, ये तो वही मुसलमानों का लूटा हुआ माल लेके जा रहा, और इधर पता चला कि ये वही माल है जो लूट के लेके जा रहे हैं, तो कहा जाओ अपने माल को ले आओ। यहां पर शरीफ तौर पर जायज है, दुनिया की हर जो है अकल भी इसको एक्सेप्ट करता है। अब आते हैं अबू सुफियान को, ये पता चल गया कि उसका जो सामान जो उसने डाका मारा था, मुसलमान रेफ्यूजीज जो मुहाजिर हैं उनके माल को कब्जा करके बिजनेस कर रहा था, तो कहा वो तो छीन लिया वापस, जो मालिक थे वो आ गए, मालिकों ने अपना माल उठा लिया। तो जाहिर है कि यहां से क्या हो गई मुसलमानों की, वैसे भी नई नई एक इस्लामिक स्टेट बनी थी, कमजोर इकोनॉमी थी, और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर अभी बन रहा था, दीन अभी आस्ता आस्ता कंप्लीट होने जा रहा था। उन्होंने कहा भाई चले हम यहां से तो ये बच कर गए हैं, इनका लीडर भी यहां बच गया, हमने मारने की कोशिश की, यानी उसको असैसिनेट करने की और टारगेट किलिंग की कोशिश की आज की टर्मिनोलॉजी में, नहीं हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया, एक एनवायरमेंट क्रिएट किया मक्के के अंदर, और कहा जी कि देखो इन्होंने तजारती सामान पर कब्जा किया, ये तो बहुत बड़ा स्टेट बना रहे हैं, कल को हम सबको भी ये खा जाएंगे, हड़प कर जाएंगे। इस लश्कर एक लश्कर कशी शुरू कर दी, उसके बाद अटैक करना शुरू कर दिया मदीने के ऊपर, जंग बदर हो गई। आप लोग जानते हैं जंग बदर की डिटेल्स को मैं रिपीट करना नहीं चाहता, सिर्फ दो तीन मोटी मोटी बातें बयान करना चाह रहा हूँ। ये कब हो गई थी, टाइमिंग इसकी क्या थी? जंग बदर हो गई जब मुसलमानों ने एज ए रेफ्यूजी हिजरत की थी, उसके 2 साल गुजर चुके थे, 2 साल के बाद क्या हो गया, ये जंग बदर हो गई। अच्छा, जंग 2 साल के बाद जो जंग हुई है वो एक कबीले के साथ जंग हुई है। जंग बदर के बाद एक छोटी सी एक झड़प जिसको कहें, या आप उसको जंग का नाम दे दें, गजबा कहें, सरिया कहें, वो जो एक कबीला था बनी कुनैनका, बनी कुनैनका के साथ एक ये छोटा सा कबीला था 700 अफराद पर, अलबत्त उस वक्त की जो आबादी है 700 अफराद अच्छा खासा, अच्छी खासी आबादी शुमार होती है। इस कबीले ने क्या किया था, पीस एग्रीमेंट साइन किया था इस्लामी रियासत के साथ, और हुआ ये कि एक इनके पास मार्केट थी, इनकी बाजार था, मतलब मार्केट से मुराद एक छोटा सा बाजार था कुनैनका बाजार, उसमें एक मुसलमान खातून चली गई और वहां से कुछ शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग के दौरान दुकानदार और मुसलमान खातून के दरमियान थोड़ी सी तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई, तो वो जो अहले किताब या जो पीस एग्रीमेंट में साइन किए हुए बंदा था उसने आके मुसलमान खातून को मारा। तो एक मुसलमान जो उस मार्केट के अंदर बैठा हुआ था उसे, उसने ये मंजर देखा, वो डिफेंस के लिए आगे बढ़ा, और उसने बचाने की कोशिश की और उसका डिफेंस करने लग गया तो उस मुसलमान को उन्होंने कत्ल कर दिया। जब हुजूर पाक को पता चला कि पीस एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद वो वायलेशन कर रहे हैं, एक तशद्दुद कर रहे हैं दो, और एक बंदे को कत्ल भी किया है हमारी हुकूमत के अंदर रहते हुए, पीस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है, बंदे को कत्ल भी किया है, तो हुजूर पाक ने ऑर्डर दिया कि इनका मुहासरा किया जाए। इनका मुहासरा किया लेकिन जंग नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई हम नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर हुजूर पाक ने ऑप्शन दिया या हमारे साथ आके मिल जाओ। फिर आपके पास अगला ऑप्शन ये है कि आपको यहाँ आप रह नहीं सकते क्योंकि अब आपने यहाँ बदमाशी शुरू की है, आपको यहाँ अंदर रखना हमारे लिए खतरात से खाली नहीं है। उन्होंने वहां से क्या किया, शाम चले गए वो लोग, सीरिया की तरफ रुक कर गए। एक छोटा सा ये बीच में एक झड़प हुई थी जो बदर और ओहद के दरमियान हुई है। अगला जाते हैं जंग ओहद। मालूम है जंग ओहद, जंग ओहद जो है मुशरिकीन मक्का ने बदर के मकतूलीन के इंतकाम के तौर पर उन्होंने जो है लड़ी है, और इसकी जो लीडिंग कर रहा था वो अबू सुफियान था। और जंग ओहद की जितनी डिटेल्स है वो आपको पता है, मौलाए कायनात बदर में भी थे, मौलाए कायनात जंग ओहद में भी थे, मौलाए कायनात जंग उस वो जो छोटी सी एक जो झड़प हुई ने कुलैनका में भी मौजूद थे, हुजूर पाक भी लीड कर रहे थे। कुलैनका में शायद हुजूर पाक बाद में आए जब वो जंग करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फैसला जो है हुजूर पाक की तरफ से सुनाया गया था। ओहद में तो मालूम है आपको सारी डिटेल्स, उसकी जो है तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। अब हसनैन अलैहिस्सलाम तो इस जंग में होते नहीं है, सैदे कायनात जंग के खत्म होने के बाद जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए तशरीफ लाई ओहद के अंदर। अच्छा, 5 हिजरी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंग है और आज के लिए बहुत कुछ इसके अंदर है, और अफसोस ये है कि इस जंग के बारे में स्टिल बहुत सी चीजें हैं जो इस जंग के हवाले से हैं और जो बयान होनी चाहिए और वो बयान नहीं हो पाती हैं, वो जंग खंदक या जंग अहजाब है। अहजाब यानी हज्ब, हज्ब यानी ग्रुप, ग्रुप पार्टी को भी कहा जाता है। ये असल में ऐसा था कि मुसलमानों और खासकर अल्लाह के रसूल के खिलाफ दुश्मन का एक ग्रैंड अलायंस था, एक अलायंस बनाया था, एक कोलिशन आर्मी तश्कील दी थी आज की जबान में। बिल्कुल आप ये दोनों लफ्ज 100% इस जंग के ऊपर, जंग अहजाब के ऊपर फिट आ जाते हैं। मैं इशारा करता हूं कुछ अरसा पहले मिडिल ईस्ट के अंदर जब इसी तरह जो है कुछ मुल्की आर्मी और वगैरह वगैरह और सीरिया के मसाइल आ रहे थे, तो बार बार हम अपने दोस्तों को कहते थे जंग अहजाब की स्टडी करो, इस वक्त जो सिचुएशन है वो जंग अहजाब की है, वही अहजाब वही है। दुश्मन का एक ग्रैंड अलायंस हुआ है, सारे सबको इकट्ठा किया है, मुशरिकीन भी हैं, अहले किताब भी हैं, सारे कबीले हैं, सबको इकट्ठा करके एक बड़ी आर्मी, कोलिशन आर्मी बनाई है। अच्छा, ये इस जंग की जो शुरुआत कहां से हुई, इस जंग की हकीकत एक ऐसे कबीले से ताल्लुक रखती है जो मदीने की इस्लामी रियासत के अंदर रहता है, अहले किताब में से है, बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमिकली कल्चरली और बड़ा असर और रसूख रखता है क्योंकि इकोनॉमी और कल्चर उसके पास बड़ा अच्छा वो है, पढ़े लिखे लोग हैं वगैरह वगैरह, और ये कबीला है बनी नजीर, और इन्होंने एक मुहायदा साइन किया हुजूर पाक के साथ, पीस एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप बिजनेस करें, आप तिजारत करें, आप अपने एक्टिविटी में पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन हुजूर पाक ने फरमाया था कभी साजिश नहीं करना हमारे खिलाफ, न किसी साजिश का हिस्सा बनना, हमारे पीठ पीछे कोई ऐसी हरकत ना करना जो पीस एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहे, खिलाफ वर्जी हो रही। लेकिन हुआ क्या, सबसे बड़ी साजिश बनी नजीर ने की। इन्होंने पहले जाके मुख्तलिफ ग्रुप्स और पार्टियों को मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा किया, छोटे छोटे जो पैकेट्स थे, छोटे छोटे जो कबाइल और ट्राइबल्स थे उनके साथ बातचीत की। कुरान मजीद ने सूरह अहज़ाब के अंदर बड़ी डिटेल से जो है क्या कहते हैं इसकी तफसीलात बयान की है। दिलचस्प ये मुकम्मल आजाद है पीस एग्रीमेंट, यानी कि एक तो होता है प्रेशर, अंडर प्रेशर हो, एक होता है जी इनको आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो, आजादी इनको मुयसर नहीं हो, या रोजाना इनको तंग किया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मुकम्मल एक आजादी के साथ रहते थे। लेकिन इनको ये देख रहे थे कि दिन ब दिन ये जो मदीने की इस्लामी रियासत है ये मजबूत होती जा रही है और दिन ब दिन ये फैलती जा रही है, पैगाम इस्लाम भी लोगों के लिए दिन ब दिन एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग इसको, ये तकलीफ हो गई इनको। क्योंकि इनकी जो मार्केट और ग्रोथ थी वो अपना फ्यूचर देख रहे होंगे, उन्होंने कहा जी ये तो मसला जो है काफी खराब है। बनी नजीर ने क्या किया, मक्के में चले गए, कुरैश को भड़काया पहले, अबू सुफियान को साथ मिलाया जो मुशरिकीन में से थे, ये अहले किताब है वो मुशरिकीन है, ये खुदा के मानने वाले, एक खुदा के नबी के मानने वाले, किताब के मानने वाले, वो टोटली 100% मुशरिकीन, लेकिन पैगंबर के खिलाफ इकट्ठे हो गए, एक बड़ा इत्तेहाद बना लिया, बहुत सारे और कबाइल को कर दिया, 10,000 की आर्मी थी उस वक्त, बड़ी आर्मी है मुकाबले में मुसलमानों, कितनी आर्मी थी मुसलमानों के पास, बड़ी मुश्किल से 3,000 आर्मी थी, ये 10,000 लोग थे, और वेपन्स वगैरह सब कुछ, माली रिसोर्सेस सब कुछ इकट्ठे कर लिया इन्होंने, और मुसलमानों पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। इधर अब मदीने की रियासत में डिस्कस हो गई कि भाई अब कैसे डिफेंस किया जाए, इसमें हजरत सलमान का जो मशहूर मशोरा है, खंदक खोदी जाए, और खंदक शुरू कर दी गई, और जंग का माहौल बिल्कुल पीक पे था, गर्म हो चुका था। एक और कबीला जो मदीने के अंदर पीस एग्रीमेंट के साथ रह रहा था, एन ठीक सेंसिटिव तरीन टाइम में, बनी कुरैज़ा जो मदीने के अर्बन एरियाज में रहता था और पीस एग्रीमेंट के साथ रहता था, उसने भी बहुत बड़ी खयानत शुरू कर दी, और जो है उसने एक अंदरूनी जो है ना महाज गर्म करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को डबल महाज पे थ्रेट्स आ गए, बाहर से लश्कर आ रहा है 10,000 का, एक ग्रैंड अलायंस और क्या कहते हैं कलेशन आर्मी के साथ आ रहा है, और एक इंटरनली एक जो अंदर बैठा हुआ था पीस एग्रीमेंट के साथ, वो भी अब उसने देखा चलो जी ये तो बाहर से बड़ा लश्कर आ रहा है तो हम भी कुछ करते हैं। मदीने के अतराफ में खंदक खोदी गई, तकरीबन 15 दिन से लेकर 1 महीने तक मदीना सिटी का मुहासरा रहा, लेकिन ये जो बड़ा लश्कर था ये खंदक के पास आके खंदक को क्रॉस नहीं कर सका ये। और दिलचस्प ये है कि खंदक खोते वक्त पूरे अहले मदीना शामिल थे, खवातीन का काम था कि वो बैकअप लॉजिस्टिकल सपोर्ट फराहम करती थी, खाना पीना दीगर हवालों से इन मामलात को उन्होंने संभाला हुआ था, बेशुमुल सईदाए कायनात के, जैसे मैंने कहा कि इसमें शरीक थी सईदाए कायनात भी, खाना बनाने में, खाना तैयार करने में, खाना पहुंचाने में वगैरह वगैरह, बच्चों ने भी खंदक खोदने में पार्टिसिपेशन किया जो अपने तौर पे कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़ी सी बड़ी एज के हैं इसमें जो है बच्चों ने भी पार्टिसिपेशन किया। इसीलिए पूरे शहर के अतराफ में सिर्फ 6 दिन के अंदर खंदक खोदी गई है, और खंदक यानी कुछ छोटी सी वो नहीं थी, एक बड़ी खंदक की जिसमें घोड़े के जरिए से भी आदमी फलांग कर जो है आगे नहीं आ सकता है। खंदक को मेरे ख्याल में इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं गालिबन, जो मुझे जहन में आ रहा था कि जो बच्चे हैं वो खंदक से जो है उनकी रिवाड़ा अगर सी जंग खंदक ने उनको पहले से अवेयर किया हुआ है। यहाँ एक और बड़ा जो एक मसला आया वो था कि एक मशहूर फाइटर था जिसके ऊपर लोग भरोसा करते थे और उनका कबीला भरोसा करता था, वो जो कलेशन आर्मी थी उसमें बहुत से लोगों का एक आसरा और उम्मीद ये बंदा था कि सोचते थे कि बहुत बड़ा फाइटर है, अकेले जो है इतने लोगों से लड़ सकता है, ये तो उठनी के बच्चों को ऐसे पकड़ता है और हाथ में उठाता है वगैरह वगैरह वगैरह, इसके बहुत बड़े किस्से कहानियां और जंगजू सलाहियत इसकी महारत वगैरह वगैरह, तो ये एक उम्मीद बना हुआ था उमर इब्ने अब्दवद जिनका जो है मौलाए कायनात के साथ, इसने कोशिश की खंदक को क्रॉस करने की, जो थोड़ा सा खंदक का कम एरिया था या कमजोर एरिया था वहां से कोशिश की आगे आने की, और उसने आके जो है चैलेंज करना शुरू कर दिया कि भाई कोई है मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाओ, बुलाओ किसी को, आपने डिटेल सुनी हुई है। हुजूर पाक ने जब इसके मुकाबले के लिए मौला अली अलैहि सलाम चले गए तो कुछ वर्ड्स यूज किए जो कि अनबिलीवेबल थे उस वक्त लोगों के लिए, और आज भी बहुत सों के लिए ये बातें समझ में नहीं आती और आज भी हजम नहीं होती बहुत से लोगों को, और जिनको समझ में आती है वो आज भी पूरी तरह इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। फरमाया बरज़ल इस्लाम कुल्लुहु बिमुकाबिल शिर्क कुल्ली, ये बहुत बड़ा जुमला है, कुछ छोटी बात नहीं है, कहा कि पूरा का पूरा इस्लाम पूरे के पूरे शिर्क के मुकाबले में, शिर्क तो पता है पूरे के पूरे जितने थे कोलेशन आर्मी ग्रैंड अलायंस बनाकर आए थे वो तो पता है, इस तरफ का पूरा इस्लाम यानी एक फर्द एक शख्सियत मौलाए कायनात पूरा इस्लाम। फिर और जो जरबत लगी है उमर इब्न अब्दवद को वासिले जहन्नम किया है, तो जो लफ्ज उसके बाद फरमाया है वो उससे जो है चंद कदम आगे है, जरबत अलीन फी यौमिल खंदक अफजल मिन इबादत थकलैन, ये जो अफजल मिन इबादत थकलैन है कि टाइम फ्रेम नहीं है कि उस वक्त की सकलेन की सकलेन जब इस्तेमाल किया तो इलायो मिल कयामत। खैर, इस माहिर और जो है सख्त किस्म के जो एक जंगजू जिसके ऊपर भरोसा था 1000, इसके बारे में ये परसेप्शन था या कम से कम ये जबान ज़द आम था कि ये आदमी अकेला वन मैन आर्मी है। मतलब किस मीनिंग्स में कि ये 1000 फाइटर्स के साथ लड़ सकता है, ये अकेले, यानी ये अकेला हो 1000 लोग तलवारें लेके अटैक करें तो कहते ये आराम से इजीली फाइट करेगा। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम था उस कोलेशन आर्मी ग्रैंड अलायंस इस तरह के फाइटर्स के अलावा इंटरनल जो बनी कुरैज़ा ने प्रॉब्लम बनाया हुआ था वो बड़ा शदीद मसला था। और तीसरा बड़ा मसला जो आया था वो ये था कि तकरीबन 15 दिन से ज्यादा मदीना सिटी मुहासरे में था, कोई बिजनेस डील नहीं हो रही थी, अशाय खुर्दनोश की जो रफ्त आमद थी वो बंद हो चुकी थी, खंदक खोदी हुई थी, जाहिर है ना कोई काफिला आ सकता ना जा सकता है, तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल वैसे भी वीक थे उस वक्त। आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे वाकयात की सैदाए कायनात के हवाले से हैं कि बाज़ औक़ात खाने के लिए कुछ नहीं होता था घर में, या इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है जब तशरीफ लाते हैं तो सैदा फरमाती है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो हसनैन जो है जिक्र पढ़ के सोए हैं। मतलब ये कि अक्सर घरों का ये हाल था इंक्लूडिंग जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो और एक बहुत बड़ा जो है प्रेशर था। ये जो जंग है इसकी जंग में खुद फिर तैयारी, टेंस का माहौल, मुसलमानों की इस्तकामत, सब्र, हौसला, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का जो है इस जंग के अंदर एक फैसला कुन किरदार, इस सब को कुरान मजीद ने बड़ी जबरदस्त तरीके से कोट किया है कि हम जो है दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं मुसलमानों की इस्तकामत मुश्किलात के मुकाबले में उसकी मद सराई की है। सूरह बकरा में भी है, सूरह निसा में भी है, सूरह अहज़ाब को डिटेल ही इसी के अंदर ही। अब ये जो जंग है इसमें मुसलमानों की जो विक्ट्री है, जो जीत है, फतह है, वो एक सरनविसास फतह थी, यानी उसने आगे के लिए बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं बड़े मसाइल को जो है हल कर दिया। इस जंग में एक ये भी मिलता है कि अल्लाह की तरफ से जब ये इस्तकामत मुसलमानों ने दिखाई, सब्र और हौसला दिखाया, 10,000 की आर्मी, एक ग्रैंड अलायंस कोलेशन आर्मी को, फोर्स को, बड़े बड़े फाइटर्स को देखकर घबराए नहीं, कलील तादाद होने के बावजूद, तो खुदा की तरफ से गैबी इमदाद भी आई, एक तूफान की शक्ल में आई, जो दुश्मन के लश्कर के ऊपर वो तूफान आया था, और तूफान अलबत्त यानी वो तूफान ने जंग को के उसको नहीं बदला, रिजल्ट को चेंज नहीं किया है। जंग का रिजल्ट मौला अली अलैहिस्सलाम उमर अब्दाऊद का मुकाबला करने के बाद, उसे वासिल जहन्नम करने के बाद दुश्मन के हौसले पस्त हुए थे, लेकिन खुदा ने असल में ये तूफान भेजा था कि ये हकानियत साबित करे कि जो इस तरफ मदीने में खंदक के इस तरफ लोग बैठे हैं खुदा उनके साथ है। दलील ये है कि उनके मुकाबले में जो दुश्मन है उसके खिलाफ खुदा की तरफ से एक इलाही जो है एक अलामत और निशानी के तौर पर एक तूफान आ गया, और ये एक हिदायत पाने वालों के लिए एक साइन था कि भाई अगर आप चाहते हैं हिदायत पाए तो देखें कि ये जो है अलामत है खुदा की तरफ से। इस शिकस्त के बाद अबू सुफियान ने फौरन ही एक लेटर भेजा हुजूर पाक को और कहा कि मैं इसका बदला लूंगा। ये तो हमेशा बदले की जो खू और बीमारी थी अरबू में जाहिर है वो थी, इसने आसानी के साथ नहीं चलते थे। इस जंग के आउटपुट क्या था, रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि देखें एक बड़ा इत्तेहाद था, बड़ी आर्मी थी, तो अब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि भाई अब आपके पास क्या है ऑप्शन में, जो ने मुशरिकीन के लिए मुसलमानों के मुखालिफ हुजूर पाक के मुखालिफिन के सामने ऑप्शन क्या है, भाई आपके पास ऑप्शन क्या बचा है, आपने ग्रैंड अलायंस करना था कर लिया, जितने कबाइल थे उसको इकट्ठे कर दिए, अहले किताब और मुशरिकीन सारे इकट्ठे हो गए, बुत परस्त भी इकट्ठे हुए, खुदा परस्त भी एक हो गए मुसलमान के खिलाफ, अब और कोई अलायंस तो नहीं हो सकता, अब रोमन एम्पायर को बुलाओगे, पर्शियन एम्पायर को बुलाओगे, क्या करोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे। तो अब अगले किसी ग्रैंड अलायंस के लिए हौसले टूट गए। इसके बाद एक बड़े इत्तेहाद और इत्तेहादी अफवाज की शिकस्त ने खौफ बिठा दिया सबके अंदर, खासकर वो जो छोटे छोटे कबाइल थे जो उनकी बातों में आ गए थे, उन्होंने सोचा यार ये तहफुजात के शिकार हो गए, भाई हम तो हमने अपने लिए दुश्मनी मोल ली, क्योंकि उनकी मेंटालिटी अरब मेंटालिटी थी, वो कह रहे थे भी हमने तो मदीने वालों के साथ दुश्मनी मोल ली है, पार्टिसिपेट कर हमारा तो वैसे भी इतना कोई बड़ा वजूद है नहीं, अब ये जो है दिन ब दिन फैलते जा रहे हैं, अटैक करेंगे तो मुसलमान, तो हमेशा खौफ तारी हो गया, वदाखला फी कुलूबिहिम अर्रुअब, जो कुरान मजीद कहता है उनके दिलों में एक तरह से एक रोब बढ़ गया, दबदबा छाता गया उसके अंदर। फिर आपको मालूम है पब्लिक में जब बातें आती हैं तो फिर वो फैलती हैं, और राई को पहाड़ बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता है। इसका नतीजा निकला कि मुसलमानों की पावर, उनका एक रोब, उनकी शान और शौकत में दिन ब दिन इजाफा हो गया। और वो बास जो थोड़े से कमजोर ईमान वाले मुसलमान थे, इस्लाम कबूल किया था लेकिन अभी वो अपने डिसीजन को रिव्यू करने के लिए सोचते थे कि हमने सही डिसीजन लिया नहीं लिया, लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे, उनको भी एक एतमाद आ गया, उनके अंदर एक ताजगी आ गई। उन्होंने कहा नहीं जी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के साथ वाकया अल्लाह है और अल्लाह एक ग्रेट और सुपर पावर है। तो ये इस जंग के अंदर मौलाए कायनात का किरदार है। अगली जो एक जंग हुई है वो बनी मुस्तलक की जंग है। ये कुरैश का एक थ्योरेटिकली हम फिक्र कबीला था। इनके बारे में इतला मिली थी कि ये लोग हमले का प्लान बना रहे हैं। पहले एक इंटेलिजेंस को भेजा हुजूर पाक ने कि इंफॉर्मेशन गैदर करो कि ये वाकई कोई ऐसा प्लान है या अफवाहें उड़ाई जा रही, क्योंकि कबीले आपस में भी तो मसाइल थे तो गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती थी। तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई पैगंबर के पास कि नहीं ये तो पूरा पूरा प्लान रखते हैं, बल्कि बाज रिवायात में है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेने गए थे उनमें से एक बंदे का या दो बंदों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसको मार दिया। लिहाजा पैगंबर अकरम इस्लाम लश्कर लेकर चले गए। मामूली सी जंग हुई, 10 के करीब बंदे जो है उसमें मारे गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा जी कि बस नहीं, हम नहीं लड़ते। जाहिर है मुसलमानों की अब ताकत भी बढ़ चुकी थी। और अगला उसके बाद जो है जंग कोई नहीं हुई, जंग होते होते रह गई, वो है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया जो हिजरत के 6 साल में पेश आया है, जो है हुदैबिया के जो एरिया था उस एरिया में ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इसलिए इस एरिया के हवाले सामने रखकर इस पीस एग्रीमेंट का नाम ही पड़ गया जैसे हुदैबिया पीस एग्रीमेंट, जैसे हमारे यहाँ जिनेवा पीस एग्रीमेंट है, ओस्लो पीस एग्रीमेंट वगैरह वगैरह इस तरह के जो मुख्तलिफ है। सूरह फतह में काफी इसके बारे में डिटेल है। ये एक 10 ईयर पर मुश्तमिल पीस एग्रीमेंट था, 10 साल मुआहिदा था जो मक्के और मदीने के दरमियान हुआ है, मुसलमानों और गैर मुसलमानों के दरमियान। इस पीस एग्रीमेंट के जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे कि अब मुसलमान जो है एवरी ईयर इजीली आ सकते हैं खाने खुदा में, हज के लिए हज कर सकते हैं और बगैर किसी मुशरिकीन इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि जब मुसलमान हज के लिए निकले थे और रसूल खुदा लीड कर रहे थे तो उन्होंने रुकावट डाली थी जिस साल ये 6 हिजरी में जिस साल ये एग्रीमेंट हुआ था, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि डील हो गई, मुज़ाकरात हो गए हुदैबिया की जगह पर। इस मुज़ाकरात में जो है बहुत सारे अफराद शामिल थे, उनमें एक जो है उस्मान साहब भी थे, हजरत उस्मान भी उसमें मौजूद थे। उनके कत्ल की खबर आ गई, बड़ी सी अफवाह फैल गई, फिर जो है मुसलमान काफी उससे डिस्टर्ब हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो अफवाहें हैं, इस तरह की कोई चीज हुई नहीं है। और इस पीस एग्रीमेंट यानी फतेह सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने एक मरतबा फिर अपनी बेअत को रिपीट किया हुजूर पाक के हाथों में, और इस जो बेअत है इसका एक स्पेशल टाइटल दिया गया बेअत रिजवान के नाम से। इसीलिए पूछते हैं कि फलां सहाबी क्या बेअत रिजवान में भी मौजूद था या नहीं था, क्योंकि बेअत रिजवान को एक खास स्टेटस हासिल हो गया और हाईलाइट हो गई क्या कहते हैं ये जो बेअत थी इसके अंदर। और अगला जो इसके अंदर मरहला आता है वो जंग खैबर का है, ये जहां से असल हमारी डिबेट मौजू शुरू होने वाला था। और ये कबीले बनी नजीर बेसिकली था खैबर के अंदर, और सन 7 हिजरी में हुई। खैबर सिटी से तकरीबन 150 किलोमीटर के इलाके में ये अर्बन एरिया शुमार होता था मदीने का, और यहाँ पर कुछ यहूदी कबीले आबाद थे जिनमें बनी नजीर टॉप ऑफ द लिस्ट है। और हुआ यह था कि बनी नजीर पहले जो कि काफी सिटी के क्लोज रहते थे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, इनको जब मदीने से निकालने का हुक्म दिया था और ये शाम जाने की बात आई थी तो इनके जो लीडर्स थे, सरकर्दा अफराद थे, उन्होंने जाकर वहां खैबर में पनाह ली थी। जो कि वहां पहले से बनी कुरैज़ा, वो जो एक साजिश करने वाला कबीला था एन जंगे खंदक और अहज़ाब के वक्त, वो भी उनमें का भी एक बड़ा हिस्सा वहां पर मौजूद था। यानी तमाम जो साजिशी ग्रुप्स थे और साजिशी अनासर थे उनको खैबर वालों ने पना दी रखी थी। और नतीजा क्या निकला, जब ये साजिशी अनासर बनी कुरैज़ा के भी बनी नजीर के भी वहां पर पहुंच गए तो वहां पर साजिशें शुरू हो गई और साजिशों से पास नहीं आने लगे। इतलात मिली, फिर इंफॉर्मेशन मिल गई कि बहुत से छोटे छोटे कबाइल्स के साथ भी ये बातचीत कर रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाकर एक अलायंस फिर बनाना चाह रहे हैं और ये अटैक करना चाहते हैं सिटी ऑफ मदीना के ऊपर, जो कि मुसलमानों की इस्लामी हुकूमत का मरकज है। हुजूर पाक वहां पर रहते हैं, मौलाए कायनात सैयद ज़हरा सलाम अलैहा सैयद अली सलाम वहां पर रहते हैं। शवाल के महीने में सन 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहीं पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग की, कुछ अफराद को भेजा। वहां ये अफराद गए तो इनके साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, लड़ाई हो गई। और इस लड़ाई में इत्तेफाक की बात यह है कि खैबर वालों का जो सरदार था बूढ़ा सा, वो मारा गया। जो मुसलमान वहां गए थे इंटेलिजेंस गैदरिंग करने के लिए, उनके हाथों में मारा गया। उसके बाद 3 महीने थोड़ी सी जंगे नहीं रही, खामोश रही। मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही थी खैबर से कि खैबर वाले क्या कर रहे हैं, मजीद कबाइल के साथ बात कर रहे हैं, वेपन इकट्ठा कर रहे हैं, आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, अटैक का प्लान बना रहे हैं। एक और बड़ा कबीला जो कि गतफान नाम का कबीला था, वो जो है अब शामिल हो गया है, वो क्योंकि थोड़ा सा पावर रखता था। यूं तकरीबन जाकर मुहर्रम के महीने में ये मजीद क्लियर हो गई कि छोटी सी झड़प के बाद वाकई वो अटैक करना चाहते हैं हमारे ऊपर। हुजूर पाक ने लश्कर तैयार किया और कहा कि चलें खैबर की तरफ। अब ये जो खैबर है, ये 7 या 8 किलों पर मुश्तमिल एक पहाड़ी इलाका था। छोटे छोटे टीले और पहाड़ियां थी जिनके अतराफ में ये किले मौजूद थे और एक तरह से एक डिफेंस, तकरीबन एक नेचुरल डिफेंस ये लोग रखते थे अपने अंदर, और एक डिफेंस शील्ड का जो है ना जोग्राफिया इनको एक्सपोर्ट कर रहा था शील्ड की तरह। यहाँ तकरीबन 10 से 15 हजार टोटल जो पॉपुलेशन थी इनकी, 10 से 15 हजार के करीब ये लोग मौजूद थे। मैं एक बात अर्ज कर दूं, लफ्ज जो खैबर है हिब्रू लैंग्वेज में या इबरी जबान में किला या कास्टल या फोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब है खैबर। जब हम खैबर कहते हैं इबरी जबान में तो दैट्स मीन किला, तो जंग खैबर यानी किले वाली, कास्टल वाली या फोर्ट वाली जंग। मुसलमानों ने एक बड़ी जबरदस्त जंगी जो है यहाँ पर टैक्टिक्स यूज की, क्योंकि आप मुसलमान काफी ट्रेन हो चुके थे जंगों के बाद और हौसला भी काफी बुलंद था। इब्तदाई अटैक्स के अंदर ही 6 के करीब जो कॉस्टल या किले थे उसको फतह कर लिया मुसलमानों ने। लेकिन एक किला जो कि सबसे डिफरेंट भी था, स्ट्रॉन्ग भी था, बड़ा भी था, जो एक कबीला जिनका नाम था बनी नाइम या कमूस, दोनों नाम आए हैं, और इनके पास था और ये फतह नहीं हो रहा था, ये जो कि इनका मेन किला था। इस किले के अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के फाइटर्स भी रहते थे, वो फाइटर्स जिनकी पूरी हिस्ट्री है, कि अभी टाइम नहीं उसके हिस्ट्री को खोलने में, उसमें इशारा करता हूँ। ये फाइटर्स असल में प्रिपेयर किए गए थे उन रिवायात की बुनियाद पर जो तौरात और जबूर और इंजील में मौजूद थी कि एक नबी आखिर जमान ने जहूर करना है, यानी सिलसिला नबुवत की आखिरी जो खातमुल अंबिया है उसने जहूर करना है, और जब वो जहूर करेंगे तो उसका दीन यूनिवर्सल होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मुंतजरीन जहूर नबी आखिर जमान खातमुल अंबिया थे, जैसे कि आज हम मुंतजरीन जहूर खातमुल अवलिया और खातमुल औसिया हैं। तो ये मुंतजरीन जहूर खातमुल अंबिया थे, इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे थे बाय वेपन भी, और जो जो उनकी समझ में आ रहा था, और बाय फाइटर्स भी वहां पर मुस्टंडे इन्होंने तैयार किया हुआ था, खिलाफ इलाके बॉडी बिल्डर्स उन्होंने और बड़े फनून हार्ब, और उनका कोई और काम नहीं था ये मरहब और इस तरह के लोगों का, ये सिर्फ जंगी उसमें तैयारी करते कि कब जहूर होगा कब जहूर होगा। जहूर हो गया, देखा इनको कोई स्टेटस नहीं मिला, क्योंकि तो तवक्को कर रहे थे ना कि हम तो स्पेशल हैं, हमें स्टेटस मिलेगा। जैसे हम में से आज बहुत से लोगों का ये तवक्को है कि इमाम के जहूर करते ही मुझे तो बहुत बड़ा स्टेटस मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो मायूसी होगी। तो ये मसला इनके लिए बन गया, और इनके जो उलमा थे उन्होंने डिटेक्ट कर लिया इन लोगों को, तो ये मराबुनी में से एक था। तो मरहब जो इस किले के अंदर था, जो मेन जो फेस कर रहा था डायलॉग में भी, जंग में भी, जो नारे लगाने में भी, जज्बात को भड़काने में भी, धमकी देने में भी, तो ये बंदा पेश पेश था। और पीछे जो इसके लोग थे किले के अंदर और दीगर फाइटर और जंगजू और जो इनके लड़ाका अफराद थे, उनका भरोसा भी इनके ऊपर था। लिहाजा यानी इसीलिए ये तंज भी कर रहा था, यानी बहुत ज्यादा इतरा रहा था वो, दावत की तरह तंज करता था बार बार। मसलन इसी दौरान एक बड़ी जबरदस्त स्टोरियां भी हैं, मैं छोटी सी बस जस्ट वो बताता हूँ कि जो बाकी किले फतेह हुए थे उनमें से जो यहूदी थे उनमें से कुछ मुसलमानों के करीब आ चुके थे, कुछ ने कहा था जी हमें हिस्सा चाहिए और आपकी अकानियत का पता चला, हम आपके ऊपर इस्लाम लाते हैं। कुछ ने कहा जी नहीं, आप हमें फ्री कर दें, छोड़ दें हमें, बास गुलाम बनाइए, बास को पकड़ लिया, कैप्चर किया था। उनमें से एक बंदा आता है, इन्हीं में से एक बंदा आकर हुजूर पाक को एक एडवाइस देता है, मशोरा, जंगी मशोरा, कहता देखें ये किला जो है ना आपको इतनी दूर से फतह नहीं होना ना, आप ऐसे करें इस किले का पानी बंद कर दें, अगर आप पानी बंद करेंगे तो ये प्यास से मरेंगे अंदर, ये खुद ब खुद सरेंडर करेंगे। हुजूर पाक ने कहा नहीं, कहा ये कहा कि हमारी इस्लामी अखलाकियात के खिलाफ है, हम दुश्मन पर भी पानी कभी बंद नहीं करते हैं। उनकी तरफ से मशवरा आया, हुजूर पाक ने इसको ठुकरा दिया। जब ये बहुत सारी कोशिशों के बावजूद वो किला फतह नहीं हो गया, तो फिर जो है हुजूर पाक ने वो गैबी जो है बातें हैं आलम गैब और मलकूत वाली, फरमाया कि कल मैं उसे अलम और झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और कहा कि वो यकीनन कल हमें फतह और कामयाबी दिलाएगा। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम नामी एक सहाबी हैं, बड़ी मशहूर इसकी जगह है कि ये कोट करते हैं कि सुबह जब मैं सुबह मौला अली को अलम दिया और मौला अली अलैहिस्सलाम तेजी के साथ किले की जानिब बढ़े, वो दरवाजे के करीब गए, जाकर सीधा सीधा अलम को गाड़ दिया। मतलब वो ये कहना चाह रहा है जो ही अलम हाथ में थमा दिया हुजूर पाक ने, मौला अली सलाम ने पीछे नहीं देखा, दाएं बाएं नहीं देखा, कौन आ रहा है, कौन है, कितने लोग हैं, डिफेंस कौन करेगा, किधर कौन खड़ा, नहीं, सीधे तेजी के साथ कह रहे हैं बड़े दरवाजे की तरफ, किले के दरवाजे के पास जाके अलम को जमीन पे गाड़ दी और गाड़ पे खड़े हो गए वहां पर। तो मुस्लिम कहता है कि हम सब हो गए कि क्या हो गया, अचानक बिजली की तेजी के साथ निकल गए हजरत अली अलैहिस्सलाम। किले की दीवार के ओट से जो मरहब था वहां पर उसने सर निकाल कर पूछा कि भाई तुम हो कौन, कल तक तो कोई नहीं आया था अल बिन मुबारिस कह के, तो जवाब आया जी मैं अली हूँ अबू तालिब का बेटा। छोटी सी एक क्लैश हो गई, जंग हो गई, और इस जंग के दौरान जो है मौला अली इस्लाम की जो स्पेर है, जो ढाल है, वो गिर गई मेरे ख्याल में हाथ में, क्योंकि मौला अली के सामने जो सिर्फ मरहब नहीं था और भी साइड से अटैक्स हो रहे थे, तो उस अटैक के दौरान खालिबन गिर गई। तो हजरत अली इस्लाम ने खैबर के दरवाजे को उठा लिया, एक दरवाजे के एक हिस्से को उसको उठाकर जो है स्पेर बना ले लिया, और मरहब को मारने के बाद, यानी जब उसे मार दिया, तो जाकर फिर उस दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया मौला अली अलैहिस्सलाम ने, जो कि बहुत ही वेट रखने वाला एक दरवाजा था, दर्जनों अफराद के बगैर ये ओपन नहीं होता था, ऐसे जो इसकी अपनी रेलिंग में हो और इसे खींच के क्लोज और ओपन करने के लिए एक दर्जन अफराद चाहिए होते थे या उन्होंने घोड़े रखे हुए थे, तो ये अकेले हजरत अली इस्लाम ने फेंक दिया। बाद में मौला अली इस्लाम ने इसकी वजाहत भी कर दी है अपने एक बयान में कि फरमाते हैं मा कलअतु किलअत बाबिल खैबरी बे कुव्वतिल जिस्मानिया औ जसदिया वलाकिन अल्लाह बे कुव्वतिन, यानी फरमाते कि मैंने जिस्मानी या फिजिकल पावर से इस दरवाजे को उखाड़ कर नहीं फेंका था, बल्कि जो ताकत मैंने यहाँ इस्तेमाल की थी वो खुदाई और मलकूती ताकत थी, उसके जरिए से मैंने उसे उठाकर फेंका था। जिस्मानी ताकत की बात करें तो फिर मौला को तो वो खुश्क रोटी घुटने पर रख के मुश्किल से तोड़ते थे, बाज जगहों में है कि थैले को जमीन पर रखते थे, एक पत्थर से उसे ऐसे पहले कूटते थे रोटी को, फिर उसमें से वो रोटी निकालते थे। तो अगर जिस्मानी कुव्वत की बात करें तो मसलन इस हद तक यहाँ जो है वाजह है ये चीजें जो है ना। इस जंग में मुसलमानों के तरफ से 20 खवातीन भी ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा भी इसके अंदर शामिल थी, और ये खवातीन जो है वो मुसलमानों के लिए मरहम पट्टी करना, और देखभाल करना और इस तरह के जो मसाइल हैं उससे जो है को संभालती थी। अगला जो आ रहा है मैं तेजी के साथ गुजर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी लोकल भी मजलिस स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, वो फतेह मक्के का है जिसको फतेह अजीम कहा जाता है। 20 रमजान और सन 8 हिजरी में जो हमारी तारीख है मॉडर्न, उसमें 10 जनवरी 630 मेरे ख्याल में बनता है। और ये फतेह मक्के की बेसिक जो रीजन है, मुसलमानों ने अटैक नहीं किया मक्के में जाकर, मुसलमान पीस एग्रीमेंट जो सुलह हुदैबिया था उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे थे। पीस एग्रीमेंट की जो खिलाफ वर्जी है, वायलेशन हुई है, वो कुरैश की तरफ से हुई, अबू सुफियान की पार्टी और मक्के वालों ने किया। वहां एक कबीला था, कबीले बनू दाइल या बनू वाइल, बिकर बिन अब्दुल मनाफ के नाम से। उसकी एक और जैली शाख है बनू नफाका, इन्होंने जो है मुसलमानों के एक हलीफ कबीला जो मुसलमानों के साथ इत्तेहादी था, मुसलमानों का अलाई था, उस कबीला यानी खुजा पर हमला कर दिया। ये तय था पीस एग्रीमेंट में कि आप जो है दूसरे के जो अलाई हैं उन पर भी अटैक नहीं करेंगे, जैसे कि आज भी मुल्कों के दरमियान ये एग्रीमेंट होते हैं कि बगैर अगर आप पर अटैक होता है तो हम डिफेंस के लिए आ जाएंगे, और जैसे कि हुआ सीरिया पे अटैक हुआ तो वहां पर खैर मुकदस मकामात अपनी जगह, इसी तरह इराक पे अटैक हुआ हालांकि पीस एग्रीमेंट भी नहीं था, उसके बावजूद जो है मदद के लिए चले गए। ये उस वक्त हुजूर पाक के दौर में भी होता था, खुजा कबीले कबीला अलाई था मुसलमानों का और मुसलमान कबीला था, खैर उसमें दूसरे लोग भी रहते थे, जब उन्होंने अटैक कर लिया तो कहा भाई आपने पीस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। और हुआ ये था कि इस खुजा कबीले के ख्वातीन और बच्चों तक को भी मारा था, हत्ता बीमार जो उधेड़ उम्र लोग थे उनको भी उन्होंने मारा था कुरैश ने। और ये जो एग्रीमेंट था मीसाक हुदैबिया उसकी खिलाफ वर्जी थी, लिहाजा पैगंबर खुदा ने फरमाया कि भाई आप जो है ना मक्के वालों को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है, 10,000 का लश्कर लेकर मौलाए कायनात की क़यादत में फतेह मक्के की तरफ निकल पड़े। इस जंग में और इस लश्कर में जनाब सईदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा भी मौजूद थी। ये हिस्टोरिकली प्रूफ नहीं है कि आया इमाम हसन अलैहि सलाम भी इसमें मौजूद थे, यानी कम से कम फैमिली उनके साथ ट्रेवल कर रही थी, तो इसमें जो है इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। मजमून मेरे ख्याल में उस वक्त आपकी उम्र होगी, क्योंकि टोटल जो इमाम हसन अली सलाम ने हुजूर पाक के साथ जो उम्र गुजारी है वो 7 साल की उम्र है टोटल। आप 7 साल के थे तो हुजूर पाक इस दुनिया से चले गए थे। फतेह मक्का कैसे हुआ डिटेल्स आप लोगों को मालूम है, मैं नहीं डिटेल में जाना चाहूंगा। उसके बाद जो एक आता है एक छोटा सा गजवा आता है जो रोमन एम्पायर के साथ के लिए के खिलाफ जो है, क्योंकि उनकी तरफ से थ्रेट्स आ रहे थे मुसलसल, गजवे तबूक कहते हैं जो तबूक एरिया है वहां पर, क्योंकि बैटल फील्ड वो एरिया था इसलिए उसी नाम से मशहूर हुआ। रोमन एम्पायर्स के अटैक के मुमकिन डिफेंस के लिए एक लश्कर तैयार करके वहां पर चले गए और हुजूर पाक खुद लीड कर रहे थे इसको, लेकिन जब आप लीड के लिए निकले तो मक्के में आपने मौलाए कायनात को अपनी जगह पर बिनवाने जानशीन के तौर पर वहां पर बिठा दिया था। ये टोटल जंगे हैं जो हुजूर पाक के दौर में हुई। मुझे लगता है एक और निशस्त हमें करने पड़ेगी। तेजी से 4 मोटी मोटी बातें फुतुहात इस्लाम या फुतुहात मुस्लिमीन के आपको ऐड कर दूं और आपकी जहमत तमाम, क्योंकि यहाँ मोमिन इंतजार कर रहे हैं। देखें किसी भी इन फुतुहात में हुजूर पाक के बाद जो खुलफा ने की हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शिरकत नहीं की, हसनैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत नहीं की, हाँ इमाम अली के क्लोज तरीन जो साथी हैं अम्मार वगैरह वगैरह इनमें से बास ने शिरकत की है। मुमकिन है कि इनमें से बास को मौला अली सलाम ने रोका ना हो, अपने तौर पे फैसला लिया हो, या बास को प्रेशराइज किया गया हो वगैरह वगैरह। इन फुतुहात की कोई शरी हैसियत नहीं है। इस जंग को दुरुस्त इकदाम मौला अली अलैहि सलाम नहीं समझते थे। अगर कहें एडवाइस दिया है, कहें मशुरा दिया है, तो मुसलमानों के जो आम फायदा और मफाद है उसको सामने रखकर मशवरा दिया है, ताकि मुस्लिम टेरिटरी और आलम इस्लाम को नुकसान न पहुंचे, ताकि इस ऐसा एडवाइस दिया जिससे दुश्मन जो है गलबा ना पाले, ताकि मुस्लिम टेरिटरी और इस्लामी जो दुनिया है वो नाबूद हो जाए, इसलिए मशवरे दिए हैं। खुद इन प्रिंसिपली इस जंग को इस्लामी जंग और शरी कोई हैसियत लेजिटिमेसी पे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल भी नहीं दी है। इसी तरह फतेह ईरान हो, मिस्र हो या शाम हो, इन तमाम जो फतुहात हैं इसमें किसी तरह की कोई पार्टिसिपेशन किसी अहले बैत अलैहिस्सलाम में से किसी की भी नहीं रही है। हाँ, कुछ रिवायात गढ़ी गई हैं कि ईरान की फतह में इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो बिल्कुल इसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हमारे उलमा इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। ये एक फतुहात का एक अलग चैप्टर है जिसके ऊपर इंशाल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी किसी और वक्त एक और निशस्त में हम डिस्कस करेंगे। और जो करबला तक पहुंचने का सिलसिला था वो मेरे ख्याल में आज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम थोड़े से मुकदमे में ज्यादा उलझ गए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।